एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो देखिए छपी तो 1958 में थी, लेकिन लगता है जैसे आज के लिए ही लिखी गई हो।
हाँ बिल्कुल, इसके सवाल आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा हमें परेशान करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं।
हम बात कर रहे हैं हैना एरेंट की, 20वीं सदी की एक बहुत ही प्रभावशाली विकारक, और उनकी किताब है द ह्यूमन कंडीशन।
बिल्कुल, ये किताब ना सीधे हमारे होने के मतलब पर सवाल उठाती है, पूछती है कि इस आधुनिक भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान होने का मतलब क्या है,
हमारा असली रोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या हम सिर्फ पैसा कमाने, चीजें इस्तेमाल करने, अपनी जरूरतें पूरी करने बस इसी के लिए हैं,
या कहानी कुछ और है, कुछ बड़ी।
हाँ, एरेंट हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, जिसे वो वीटा एक्टिवा कहती हैं, मतलब हमारा सक्रिय जीवन, उसको बिल्कुल एक नए तरीके से देखने का नजरिया देती हैं।
वो कहती है कि हम जो कुछ भी करते हैं, काम करना, घर चलाना, दोस्तों से मिलना, पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत रुचि लेना, इन सब का एक मतलब है, एक क्रम है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने ये क्रम गड़बड़ा दिया है? क्या हम अपनी असली इंसानी भूमिका, अपना असली रोल भूल गए हैं? तो आज उसी की गहराई में उतरेंगे जरा।
तो सबसे पहले ये हाना एरेंट थी कौन, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है।
बिल्कुल नहीं। हाना एरेंट देखिए जर्मन अमेरिकी राजनीतिक विचारक थी। वो खुद को दार्शनिक से ज्यादा पॉलिटिकल थिंकर कहलाना पसंद करती थी।
अच्छा।
जर्मनी में एक यहूदी परिवार में जन्मी और पढ़ाई की हाइडेगर और जैस्पर्स जैसे बड़े दार्शनिकों से, लेकिन उनकी सोच सिर्फ किताबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं।
हाँ, क्योंकि नाजी जर्मनी का उभार, उसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी।
बिल्कुल, यहूदी होने के कारण उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा, पहले फ्रांस गई फिर अमेरिका।
और यही अनुभव एक शरणार्थी होने का, मतलब स्टेटलेस, राज्य विहीन होने का, उनकी सोच की जड़ में है ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आधुनिक समाज में टोटलिटेरियनिज्म, मतलब नाजीवाद जैसी भयानक चीजें संभव हो पाईं। उनकी पहली बड़ी किताब द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इसी पर थी,
और द ह्यूमन कंडीशन उसी सोच को एक तरह से आगे बढ़ाती है, ये समझने की कोशिश कि आधुनिक जीवन में ऐसा क्या बदल गया है जिसने हमें अपनी बुनियादी इंसानी स्थिति से ही शायद दूर कर दिया है।
उनकी खासियत यही थी कि वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होती थी, मतलब वो संकट के समय में सोचने वाली विचारक थी। उनकी बातें किताबी बहसों से ज्यादा असल दुनिया की उथल पुथल, असल संकटों से जुड़ी थीं।
इसीलिए शायद वो आज भी इतनी रेलेवेंट लगती हैं, क्योंकि वो सीधे हमसे सवाल पूछती हैं, हमारी भूमिका क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है।
अच्छा, तो द ह्यूमन कंडीशन किताब का फिर मूल विचार क्या है, सार क्या है इसका?
जैसा हमने कहा, ये हमारे वीटा एक्टिवा, हमारे सक्रिय जीवन को समझने की कोशिश है। आरेंट कहती हैं कि हम इंसान मुख्य तौर पर तीन तरह की गतिविधियां करते हैं।
तीन तरह की?
हाँ।
कौन कौन सी?
श्रम, लेबर, कार्य, वर्क, और क्रिया, एक्शन। अब सुनने में ये शायद बड़े साधारण से शब्द लगे।
हाँ, लेबर, वर्क, एक्शन, रोजी करते हैं।
बिल्कुल, पर एरेंट इनमें बहुत गहरा फर्क करती हैं, और यही उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि थोड़ा चौंकाने वाला दावा आता है।
क्या दावा है?
वो कहती हैं कि आधुनिक समाज ने इन तीनों गतिविधियों के महत्व को बिल्कुल उलट पुलट दिया है।
उलट पुलट दिया है
कैसे? हमने श्रम, मतलब लेबर, वो काम जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे रोजी रोटी कमाना, घर के काम निपटाना, उसको सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया है।
अच्छा, मतलब सिर्फ सर्वाइवल वाला काम।
हाँ हाँ, वो कहती है हम एक श्रमिकों का समाज बन गए हैं, अ सोसाइटी ऑफ लेबरर्स, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, बस उत्पादन करते रहो और उपभोग करते रहो, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बस।
और इस चक्कर में बाकी दो चीजें पीछे छूट गई।
हाँ, कार्य, वर्क का महत्व कम हो गया, यानी वो गतिविधि जिससे हम टिकाऊ चीजें बनाते हैं, घर, कला, संस्थाएं, वो चीजें जो हमारी दुनिया को स्थायित्व देती हैं, जो हमसे ज्यादा जीती हैं।
और सबसे बड़ा नुकसान?
सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्रिया का, एक्शन का। एरेंट के लिए यही सबसे ऊंची मानवीय गतिविधि है, सबसे ज्यादा ह्यूमन।
एक्शन, इसका क्या मतलब है यहाँ?
एक्शन यानी जब हम सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक स्फीयर में, दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करते हैं, अपनी पहचान जाहिर करते हैं, आजादी का अनुभव करते हैं, ये हमारी असली राजनीतिक और मानवीय भूमिका है एरेंट के हिसाब से।
और ये आज कम हो गया है,
उनका तो यही मानना है। वो हमें इतिहास में ले जाती हैं, खासकर प्राचीन ग्रीस के शहरों तक, पॉलिस तक,
हाँ, पॉलिस सिटी स्टेट,
वो मानती हैं कि वहाँ निजी जरूरतों का दायरा, जिसे वो ओइकोस कहती हैं, घर परिवार अर्थव्यवस्था, और सार्वजनिक जीवन का दायरा पॉलिस राजनीति बहस बराबरी, इनके बीच एक साफ फर्क था।
और सार्वजनिक जीवन आजादी का क्षेत्र था जहाँ आप नागरिक की तरह एक्ट करते थे, ना कि सिर्फ घर चलाने वाले की तरह।
बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे और खासकर आधुनिक युग में एक नई चीज उभरी। एरेंट उसे कहती है सामाजिक, द सोशल।
द सोशल ये क्या है?
ये असल में निजी चिंताओं का, मतलब घर परिवार अर्थव्यवस्था की चिंताओं का, सार्वजनिक जीवन पर कब्जा है।
ओहो, मतलब जो चीजें घर के अंदर होनी चाहिए थी वो पब्लिक लाइफ पर हावी हो गई हैं।
हाँ, और ये सामाजिक दायरा एरेंट के अनुसार बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इसमें राजनीति क्या बन जाती है? असली मुद्दों पर बहस की जगह वो एक तरह का बड़ा घर संभालने जैसा काम बन जाती है।
नेशनल हाउसकीपिंग।
बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, नियमों का पालन करवाना, बस यही। और नागरिक, नागरिक की भूमिका सिकुड़कर सिर्फ एक टैक्सपेयर या कंज्यूमर की रह जाती है।
हमारी असली राजनीतिक भूमिका निभाने की जगह ही कम हो गई है, मतलब।
हाँ, यही उनका तर्क है। तो सवाल यही है कि क्या हम अपनी असली मानवीय क्षमता खो रहे हैं? क्या हमारा रोल और गोल बस इतना ही रह गया है? चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं, एक एक करके।
ठीक है, तो किताब की शुरुआत में ही एरेंट स्पुटनिक के लॉन्च जैसी घटनाओं का जिक्र करती हैं। पहला सैटेलाइट।
हाँ, वो क्यों?
वो कहती है कि ये दिखाता है कि इंसान कैसे अपनी इस पृथ्वी, अपनी मानवीय स्थिति से ही भागना चाहता है। ये सिर्फ विज्ञान की तरक्की का जश्न नहीं, बल्कि एक तरह का खतरनाक पलायनवाद है।
अच्छा, धरती से भागने की इच्छा।
हाँ, यही वो कहती है कि हम मानव स्वभाव को शायद कभी पूरी तरह न जान पाए, पर हम उन स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं जिनमें हम जीते हैं, हमारी कंडीशंस।
जैसे?
जैसे जन्म लेना, मरना, पृथ्वी पर रहना, और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ रहना। और इन्हीं स्थितियों से जुड़ी हैं वो तीन बुनियादी गतिविधियां, श्रम, कार्य और क्रिया।
ठीक है, तो पहले बात करते हैं श्रम की, लेबर।
हाँ, लेबर। ये हमारे शरीर की जैविक जरूरतों से जुड़ा है, मतलब जिंदा रहने के लिए जो करना ही पड़ता है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, और वो सारे काम जो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, जैसे खेती करना, खाना पकाना, सफाई करना।
आयरन कहती है कि जब हम सिर्फ श्रम करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? एनिमल लेबोरेंस।
एनिमल लेबोरेंस, श्रमिक पशु।
हाँ, मतलब ऐसे प्राणी जो बस जीवन की एक अंतहीन चक्की पीस रहे हैं। ये काम कभी खत्म नहीं होता, इसका कोई टिकाऊ नतीजा नहीं होता। इसके उत्पाद जैसे खाना तुरंत इस्तेमाल हो जाते हैं।
ये जरूरी है, जाहिर है।
हाँ,
इसके बिना हम जी नहीं सकते।
बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एरेंट कहती हैं कि ये आजादी नहीं है, ये जरूरत है, नेसेसिटी।
और आधुनिक समाज की बड़ी समस्या यही है उनके हिसाब से, कि उसने इसी श्रम को सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है।
हाँ, मार्क्स जैसे विचारकों ने भी, एरेंट मानती हैं, इसी को महिमा मंडित किया। नतीजा, हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां लक्ष्य सिर्फ ज्यादा उत्पादन और ज्यादा उपभोग है।
हमारी नौकरी भी अक्सर इसी श्रम के दायरे में आ जाती है ना? बस जीवन चलाने का साधन, जिसमें हमारी असली पहचान, हमारी रचनात्मकता शायद ही जाहिर हो पाती हो।
बिल्कुल, ये जीवन का क्या है, क्यों नहीं।
इसके बाद आता है कार्य, वर्क।
हाँ, वर्क। ये होमोफाइबर की गतिविधि है, निर्माता मानव की।
होमोफाइबर मतलब जो चीजें बनाता है।
हाँ, ये वो है जब हम दुनिया में टिकाऊ चीजें बनाते हैं, औजार, घर, सड़कें, कलाकृतियां, किताबें, कानून, संस्थाएं।
वो चीजें जो हमारे जीवन से ज्यादा टिकती हैं।
बिल्कुल, ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाती हैं। वो मानव निर्मित माहौल, वो ह्यूमन आर्टिफैक्ट जो हमें प्रकृति की अनिश्चितता से थोड़ी सुरक्षा देता है और जिसमें हम स्थिरता से रह सकते हैं।
कार्य का एक आदि और अंत होता है ना? एक प्लान होता है, एक मकसद होता है।
हाँ,
इसमें हम दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हैं।
ये हमें एक स्थायी साझा दुनिया देता है। लेकिन
लेकिन
एरेंट यहाँ भी एक चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि होमोफेबर की सोच, मतलब हर चीज को उपयोगिता के नजरिए से देखना, बनाने बिगाड़ने के तर्क मींस एंड लॉजिक से सोचना, ये सोच राजनीति पर लागू नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकते? राजनीति में भी तो प्लानिंग और नतीजों की बात होती है।
होती है, लेकिन राजनीति इंसानी रिश्तों के बारे में है, लोगों के बारे में है, चीजें बनाने के बारे में नहीं। जब हम राजनीति को भी एक कार्य की तरह समझने लगते हैं तो हम लोगों को भी, मतलब सामग्री की तरह, रिसोर्सेस की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और वहां आजादी खत्म हो जाती है।
अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है।
और फिर आती है क्रिया, एक्शन। एरिंड के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे नाजुक मानवीय गतिविधि है।
नाजुक क्यों?
क्योंकि ये अकेली गतिविधि है जो सीधे इंसानों के बीच होती है, बिना चीजों के माध्यम के। ये इस बात से जुड़ी है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम बहुलता प्लुरालिटी में रहते हैं।
प्लुरालिटी मतलब?
मतलब हम सब अलग हैं, अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, और हम दूसरों के साथ मिलकर ही इंसान बनते हैं, अकेले में नहीं।
और क्रिया लगभग हमेशा वाणी यानी स्पीच के साथ होती है ना?
हाँ, बोलकर और कुछ करके ही हम दुनिया में अपनी पहचान जाहिर करते हैं कि हम कौन हैं, हु वी आर, न कि सिर्फ क्या है, जैसे हमारी नौकरी क्या है, हमारा हुनर क्या है।
क्रिया में हम खुद को दूसरों के सामने लाते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हैं।
बिल्कुल, और ये जन्म दर से जुड़ी है।
नटैलिटी,
जन्म लेने की क्षमता। हाँ, एरेंट के लिए हर जन्म एक नई शुरुआत का प्रतीक है। क्रिया का मतलब है कुछ नया शुरू करना, कुछ ऐसा करना जो पहले से तय ना हो, जिसका नतीजा अप्रत्याशित हो। यही असली आजादी है, स्पॉन्टेनिटी।
लेकिन एक्शन के लिए, क्रिया के लिए एक जगह चाहिए, है ना? एक पब्लिक स्पेस।
हाँ, एक सार्वजनिक मंच जहां हमें देखा और सुना जा सके, जहां हमारी बातें और काम याद रखे जा सकें। प्राचीन ग्रीस का पुलिस एरेंट के लिए इसी का मॉडल था।
और यही शक्ति पैदा होती है, पावर, लोगों के एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। ये जोर जबरदस्ती वाली ताकत, फोर्स नहीं है।
बिल्कुल। तो अब पूरी तस्वीर जोड़ते हैं। एरेंट कहती हैं कि इतिहास में क्या हुआ, धीरे धीरे पहले चिंतनशील जीवन का महत्व घटा, फिर सक्रिय जीवन में भी क्रम उलट गया।
कैसे?
क्रिया की जगह कार्य ने ले ली, और फिर आधुनिक युग में श्रम सबसे ऊपर आ गया।
डेकार्त के संदेह ने हमें दुनिया से काटा, और जो औद्योगिक क्रांति और मार्क्सवाद हैं, उन्होंने श्रम को नायक बना दिया।
हाँ, नतीजा एनिमल लेबरेंस की जीत, हम सब नौकरी पेशा लोगों का समाज बन गए, जहाँ हर चीज को आजीविका कमाने, जीवन चलाने के नजरिए से देखा जाता है।
और इससे पैदा हुआ है विश्व अलगाव, वर्ल्ड एलिनेशन।
मतलब?
मतलब हम उस साझा टिकाऊ दुनिया से कट गए हैं जो कार्य से बनती है, क्योंकि सब कुछ अब इस्तेमाल करके फेंकने के लिए बन रहा है।
डिस्पोजेबल
चीजों का मूल्य उनकी उपयोगिता या बाजार भाव में सिमट गया है, उनके स्थायित्व या सुंदरता में नहीं।
और राजनीति की जगह ले ली है समाज ने, वही नेशनल हाउसकीपिंग, नियम, प्रशासन, आर्थिक प्रबंधन,
जहाँ असली बहस नई शुरुआत यानी क्रिया की गुंजाइश कम होती जा रही है।
हमारा रोल मानो बस इस सिस्टम का पुर्जा बने रहना है, और गोल बस ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना।
एरेंट ऑटोमेशन के खतरे पर भी बात करती हैं, जो आज कितना सच लगता है।
हाँ, कि अगर भविष्य में मशीनें सारा श्रम करने लगें तो हम क्या करेंगे?
क्या हम आजाद होकर कार्य और क्रिया में लगेंगे, या चूंकि हमने इन क्षमताओं को भुला दिया है तो हम बस बेहतर उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे, ज्यादा खाली समय पर ज्यादा बोरियत और अर्थहीनता के शिकार।
ये वाकई एक गहरा सवाल है। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकलती हैं?
सबसे पहली और बुनियादी बात तो यही लगती है
कि श्रम, कार्य और क्रिया अलग अलग है और उनका एक सही क्रम है।
हाँ, एक स्वस्थ इंसानी जीवन और समाज के लिए क्रिया मतलब राजनीतिक जुड़ाव, नई पहल, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए।
और आधुनिकता की त्रासदी यही है कि उसने सब कुछ श्रम के स्तर पर ला दिया है, या कम से कम उसी नजरिए से देखती है। हमारी पहचान हमारी नौकरी से तय होती है, हमारे कामों या विचारों से कम।
दूसरी अहम बात, एक जीवंत सार्वजनिक दायरे का होना कितना जरूरी है, और वो कैसे सिकुड़ रहा है?
वो जगह जहां हम सिर्फ अपनी निजी जरूरतों से ऊपर उठकर नागरिक के तौर पर मिलते हैं, बहस करते हैं, मिलकर कुछ करते हैं। एरेंट की कियतारमी है कि सामाजिक दायरे ने जहां आर्थिक चिंताएं, प्रशासनिक नियम हावी हैं, उसने इस जगह को लगभग खत्म कर दिया है।
राजनीति अक्सर सिर्फ मैनेजमेंट या पहचान की लड़ाई बनकर रह जाती है, बुनियादी मूल्यों या साझा भविष्य पर खुली क्रिया कम दिखती है, है ना?
बिल्कुल।
तीसरा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, निराशा के बीच उम्मीद कहाँ है?
उम्मीद है जन्मदर, नेटैलिटी और प्लुरालिटी में।
हाँ,
एरेंट मानती हैं कि क्योंकि नए इंसान हमेशा पैदा होते रहते हैं और हर इंसान यूनिक है, इसलिए कुछ नया शुरू करने की क्षमता, क्रिया कभी खत्म नहीं हो सकती।
दुनिया कितनी भी नियंत्रित लगे, बदलाव और नई शुरुआत हमेशा संभव है,
चाहे वो जमीनी स्तर के आंदोलन हो, कोई नई कला हो, या बस दो लोगों के बीच एक सच्ची ईमानदार बातचीत। ये सब क्रिया के ही उदाहरण हैं।
और चौथा, उपभोक्तावाद और विश्व अलगाव की तीखी आलोचना।
हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चीजें इस्तेमाल करके फेंकने के लिए बनती हैं। इससे हम उस टिकाऊ साझा विश्व से कट रहे हैं जो हमें स्थायित्व देता है।
ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे मानवीय अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ चीजें जमा करना और उपभोग करना, या एक ऐसी दुनिया बनाना जो रहने लायक हो, जो हमारी कहानियों को सहेज सके?
एरेंज के विचार कई बार थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन उनके मूल तर्क बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ। जैसे उनका ये कहना
कि क्रिया और वाणी में ही इंसान दिखाते हैं कि वो कौन है, ना कि सिर्फ क्या है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे काम या पद से ज्यादा हमारे सार्वजनिक कार्यों और विचारों में है। हमारा रोल सिर्फ एक कर्मचारी या उपभोक्ता होने से कहीं बड़ा है।
या फिर सामाजिक दायरे पर उनकी टिप्पणी कि कैसे समाज के उदय ने सार्वजनिक दायरे को निजी जरूरतों के अधीन कर दिया है।
ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या आज की राजनीति वाकई जनता की आवाज है, या बस बड़े पैमाने पर घर चलाने का नाम है? क्या हम नागरिक हैं या सिर्फ नियमों का पालन करने वाले?
लेकिन फिर वो उम्मीद भी जगाती हैं जब वो कहती हैं कि दुनिया को बचाने वाला चमत्कार अंततः जन्म दर यानी नटालिटी का तथ्य है, यानी नए मनुष्यों का जन्म और नई शुरुआत करने की उनकी क्षमता।
ये याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा संभव है, क्योंकि इंसानी क्षमता नई शुरुआत करने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती।
तो सवाल उठता है कि इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
शायद पहला कदम तो अपनी जिंदगी को ही एरेंट के नजरिए से देखना है। हम अपना समय कैसे बिताते हैं, कितना वक्त सिर्फ श्रम में जाता है, मतलब वो काम जो जरूरी है पर दोहराव वाला है, जो बस दिन गुजारने के लिए है,
और कितना समय कार्य में लगता है। क्या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो टिकेगा, चाहे वो कोई दफ्तर का प्रोजेक्ट हो, कोई हुनर सीखना हो, या घर में कोई चीज बनाना हो?
और सबसे जरूरी, क्रिया के लिए कितनी जगह है? क्या हम दूसरों के साथ सार्थक बातचीत करते हैं, मुद्दों पर बहस करते हैं, किसी सामाजिक या राजनीतिक पहल में हिस्सा लेते हैं?
शायद हम जानबूझकर क्रिया के लिए थोड़ा और समय निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। अपनी भूमिका को सिर्फ कमाने वाले या घर चलाने वाले से आगे देखना।
काम की जगह पर भी ये सोच लागू होती है ना?
हाँ बिल्कुल। क्या हमारा ऑफिस सिर्फ श्रम या ज्यादा से ज्यादा कार्य की जगह है, या वहाँ खुलकर विचारों के आदान प्रदान, मतलब क्रिया की भी गुंजाइश है?
क्या हम सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं, या नई पहल करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है? सहकर्मियों के साथ रिश्ते क्या सिर्फ प्रोफेशनल है, या उनमें मानवीय जुड़ाव भी है?
और समाज और राजनीति में तो ये विचार हमें एक नया लेंस देते हैं। हम पहचान सकते हैं कि कब नेता या मीडिया सिर्फ प्रबंधन या आर्थिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं,
और कब वाकई मूल्यों, दिशा या साझा जीवन पर बहस हो रही है।
ये हमें सिर्फ एक दर्शक या वोटर होने से आगे बढ़कर एक सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकता है।
सार्वजनिक जगहों, पार्क, लाइब्रेरी, नुक्कड़, स्वतंत्र मीडिया, इनकी अहमियत समझना, क्योंकि यही क्रिया के मंच है।
और हाँ, वो उपभोक्ता संस्कृति पर सवाल उठाना।
एब्सोल्यूट, हमें पूछने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम चीजों को सिर्फ उनकी कीमत या उपयोगिता से आंकते हैं? क्या हम टिकाऊपन, कारीगरी या उन चीजों को महत्व देते हैं जो हमारी साझा दुनिया को समृद्ध करती हैं?
या हम बस इस्तेमाल करके फेंकने के आदी हो गए? ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये दुनिया से हमारे रिश्ते को तय करता है, ये हमारे जीवन के लक्ष्य पर सवाल उठाता है।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि एरेंट हमें हमारी मानवीय क्षमता की ऊंचाई याद दिलाती हैं। हम सिर्फ बायोलॉजिकल प्राणी नहीं हैं, ना ही सिर्फ औजार बनाने वाले।
हमारी सबसे अनूठी और सबसे अहम भूमिका, हमारा रोल है क्रिया करने का, एक्शन लेने का।
हाँ, दूसरों के साथ मिलकर दुनिया में कुछ नया लाने की, अपनी आवाज उठाने की और आजादी को जीने की। हमें इस क्षमता को फिर से खोजना होगा, इसे महत्व देना होगा।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात, या कहूँ कि आंखें खोलने वाली बात, वो सामाजिक दायरे का विश्लेषण रहा। कैसे अनजाने में हमारी राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर आर्थिक और प्रशासनिक सोच हावी हो गई है, और असली बहस की जगह कितनी सिकुड़ गई है।
लेकिन साथ ही जन्मदर और क्रिया की संभावना में जो उम्मीद एरन दिखाती हैं, वो वाकई प्रेरणादायक है।
हाँ, ये किताब हमें हमारी दुनिया, हमारी भूमिकाओं और हमारे लक्ष्यों यानी गोल्स को नए सिरे से देखने की चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं, हम अपनी कहानी के कर्ता भी हो सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं।
और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये है, जो एरेंट ने भी उठाया था, अगर तकनीक हमें श्रम की जरूरत से आजाद कर भी दे तो क्या हम उस खाली समय का इस्तेमाल कार्य और क्रिया के लिए करेंगे?
क्या हम ज्यादा सार्थक जीवन जीने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ बेहतर और ज्यादा बोरियत वाले उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।